एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में एक मीटिंग चल रही थी, तभी अचानक मालविका आयशा के साथ वहां पहुंची और प्रोजेक्ट चुराने का सारा इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया। नक्श और आयशा ने सबूत के तौर पर एक सीसीटीवी फुटेज पेश किया जिसमें मालविका आयशा के लैपटॉप से कुछ चुरा रही थी। मालविका की बातें और सबूत इशिका को दोषी साबित कर रहे थे, लेकिन तभी रोहन ने कहा कि वीडियो में ये नहीं दिख रहा है कि मालविका क्या चुरा रही थी। हालांकि मालविका बार बार कह रही थी कि इशिका ने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, ये उसने अपनी मर्जी से किया था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड, जो अब तक मीटिंग की परस्यू कर रहे थे, ने मालविका की तरफ अजीब नज़रों से देखा और बोला, क्या आप जानती हैं कि आपने क्या चुराया था? मालविका उसके पास ही खड़ी थी, हल्का घबराते हुए बोली, ये हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी का प्रोजेक्ट था। क्या आप जानती हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल एनर्जी क्या है? डिपार्टमेंट हेड ने भौंई चढ़ाकर पूछा। उसकी बातें सुनकर मालविका के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसीलिए उसने नामे सिर हिला दिया। डिपार्टमेंट हेड आके बोला, तो आप इस बारे में कुछ नहीं जानती हैं? सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि ये फील्ड मेरी समझ से पूरी तरह बाहर है। आपने कहा कि आपकी बेटी ने आपको चोरी करने के लिए नहीं कहा था, तो फिर आपको कैसे पता चला कि क्या चुराना था? एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के हेड ने मालविका को उसकी ही बातों में फंसा दिया था। वो उलझ कर रह गई थी। मालविका ने अपनी नज़रें नीचे की और कहा, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, पर मैंने ही किया है और इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है। आप उसे सज़ा नहीं देंगे, आप चाहो तो पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवा सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ने उसे तरस भरी नज़रों से देखा। उसे यही लग रहा था कि इशिका ने ही उसे चोरी करने के लिए कहा था, जबकि वो अब उसे बचाने के लिए झूठ बोल रही थी। नक्श ने मालविका की तरफ देखा। उसे भी यही लग रहा था कि ये सब इशिका ने मालविका से करवाया था। उसे मालविका से इस वक्त नफरत करनी चाहिए, लेकिन उसे भी बाकी लोगों की तरह उस पर दया आ रही थी जो इशिका की चाल का मोहरा बन गई थी। नक्श ने गुस्से से इशिका की तरफ देखा और तेज आवाज में कहा, इशिका तुम चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या चोरी पकड़ी जाने पर तुम अपनी माँ को अकेले इन सब में फंसाने का तो नहीं सोच रही ना? बाकी सब चीज़ एक तरफ है, लेकिन ये तो मत भूलो कि इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। कोई अपनी माँ के साथ ऐसा कर भी कैसे सकता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ने नक्श की बात के जवाब में कहा, मिस्टर राजवंश, आप चिंता मत कीजिए, मेरा डिपार्टमेंट इस बात के तह तक जाएगा और सच का पता लगाएगा। किसी भी माँ के साथ यहाँ अन्याय नहीं होगा और जिसने भी ये गुनाह सच में किया है उसे उसकी सज़ा मिलेगी। इशिका चुपचाप वहां खड़ी थी। वो जानती थी कि यही होने वाला है। अगर वो कुछ कहती तो भी उसे दोषी ठहराया जाता, और अगर वो चुपचाप रहती तब भी सारा दोष उस पर डाल दिया जाता था। आयशा मालविका की तरफ गई और उसे कंधे से पकड़कर कहा, मालविका आंटी प्लीज़ सबको सच बताइए, हम जानते हैं कि आप इतनी पढ़ी लिखी नहीं हैं जो आपको पता चल जाए कि आपको क्या चुराना है। अगर गलती इशिका ने की है तो सबके सामने बताइए, आपने ये झूठा इल्ज़ाम अपने सिर ले लिया है, उसके लिए वे आपको माफ़ कर देंगे। मालविका ने एक नज़र एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की तरफ देखा। वो कंधे उचकाकर बोला, ये सच कह रही है, आपको सबको पूरी बात अच्छे से सच सच बतानी चाहिए, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है। सबको पता चल रहा है कि आपकी बेटी अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए आपको ढाल बना रही है। मालविका ने उसकी तरफ देखकर लाचारी दिखाई और फिर ज़मीन पर घुटने टेक दिए। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसकी इतनी कोशिशों के बाद भी वो अपनी बेटी को बचा नहीं पाई। उसकी आंखों में आंसू थे। अचानक वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मालविका इशिका के पास गई और उसके पैर पकड़कर बोली, मैं जानती हूँ बेटा, हम दोनों से गलती हो गई है, प्लीज़ तुम अपनी गलती मानकर सबसे माफ़ी मांग लो। ये तुम्हें काम से निकाल देंगे तो क्या हुआ, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें कोई दूसरी नौकरी मिल जाएगी। हमारा सच सामने आ गया है, अब इसे छुपाने का कोई रास्ता नहीं है। हर कोई मालविका की तरफ तरस भरी नज़रों से देख रहा था। सबको उसकी आंखों के आंसू दिखाई दे रहे थे, लेकिन इशिका उसकी सच्चाई अच्छे से जानती थी। वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, आज वो उसे इतना प्यार दिखा रही थी। सबको ज़रूर आयशा ने सिखाया होगा, अचानक ही उसकी माँ इतनी अच्छी एक्ट्रेस बन गई कि सब उसी पर यकीन कर रहे थे। इशिका जब कुछ नहीं बोली तो मालविका ने आगे कहा, आप जानते हो आजकल के बच्चे ज़िद्दी होते हैं, वे किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। मैं अपनी बेटी की तरफ से आप सबके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगी, प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। मालविका खड़ी हुई और सबके आगे जाकर झुकने लगी। सबको इशिका पर गुस्सा आ रहा था। तभी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आगे आया और उसने मालविका को रोका। वो इशिका की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है? तुम्हारी माँ यहाँ सबके आगे झुक रही है तुम्हारी गलतियों को छुपाने के लिए, और तुम वहाँ एक शेमलेस इंसान की तरह खड़ी हो? इशिका का ये चेहरा देखकर डीन ने डायरेक्टर से कहा, मैंने आपको बताया था इस लड़की के बारे में, एक तो ये गलती कर रही है, ऊपर से अपनी गलती को छुपाने के लिए अपनी माँ को आगे कर दिया। इसके बारे में आपको जो भी बताया था वो सच था, ना जाने इसने प्रोफेसर मिलर पर कौन सा जादू किया है जो वो इसका साथ दे रहे थे, इसकी वजह से मुझे उन्हें निकालना पड़ा। सोच समझ कर बात करो, तुम प्रोफेसर मिलर के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठा सकते हो, वो भी इसकी वजह से, डायरेक्टर ने उसे डांटते हुए कहा। डायरेक्टर को मीटिंग में प्रोफेसर मिलर की वजह से आना पड़ा था, उन्होंने कॉल करके सारी जानकारी उन्हें दी थी कि कैसे डीन एक स्टूडेंट को निकालने के चक्कर में उन्हें भी यूनिवर्सिटी से निकालना चाहता है। लेकिन जैसे ही डायरेक्टर ने पूरा मामला देखा उन्हें डीन पूरी तरह गलत नहीं लगा। डायरेक्टर ने इशिका की तरफ देखा और अपने आगे लगे माइक में कहा, मिस सिंघानिया तुम्हें अब सॉरी बोल देना चाहिए, अगर तुम इसी तरह अपनी जिद पर अड़ी रहीं तो प्रोफेसर मिलर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे और मुझे तुम्हें यूनिवर्सिटी सोसाइटी से निकालना होगा। उनकी बात सुनकर मालविका ने इशिका से कहा, सुना तुमने इशिका, अगर तुम माफी मांग लोगी तो वो तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार है। प्लीज बेटा, जिद मत करो। अचानक वहाँ सन्नाटा छा गया। दरवाजे पर कोई खड़ा था और उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, मिस्टर दिशांक राठौर यहाँ आ गए हैं। दिशांक के आने की बात सुनकर आयशा ने तुरंत नक्श से धीमी आवाज में कहा, याद है उस पार्टी में दिशांक और इशिका कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे थे? क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ आकर वो इशिका का फेवर करेगा और राजवंश एम्पायर से उसके लिए नरमी बरतने के लिए कहेगा? नक्श ऐसा कभी नहीं चाहता था। उसने तुरंत कहा, मिस्टर राठौर को रिसर्च रूम में लेकर जाओ, जब पूरा मामला खत्म हो जाएगा तब मैं उनसे जाकर मिलता हूँ। ठीक है। सामने से एक आदमी की आवाज आई। नक्श ने जिसे ऑर्डर दिया था वो वहां से जाने के लिए मुड़ा। उससे पहले किसी ने सख्त आवाज में कहा, उसे यहाँ लेकर आओ, उसकी जरूरत यहाँ है, ना कि रिसर्च रूम में। ये आवाज अभिमन्यु की थी जो सर्द नजरों से नक्श की तरफ देख रहा था। पूरे मीटिंग रूम में ऐसा कोई नहीं था जो अभिमन्यु के ऑर्डर के खिलाफ अपनी आवाज भी उठा सके। नक्श ने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, चाचू आप जानते हो मिस्टर राठौर डॉक्टर मर्चेंट के मैनेजर हैं, अगर वो यहाँ आए तो उसे यहाँ के बारे में सब पता चल जाएगा। वो जाकर डॉक्टर मर्चेंट को बताएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इशिका ने गुस्से से नक्श की तरफ देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिशांक को मीटिंग में आने से रोका जाएगा। हालांकि अगर वो सबके सामने अपनी सच्चाई बताती है तो दिशांक को यहाँ जरूर बुलाया जाएगा, क्योंकि वो उन लोगों में से था जिसने डॉक्टर मर्चेंट ने देखा था।
इशिका को लगा कि दिशांक को मीटिंग में नहीं आने दिया जाएगा। तभी अभिमन्यु ने कहा, उन्हें इस मीटिंग में मैंने इन्वाइट किया है। उसकी बात सुनकर इशिका चौंक गई। उसे लगा नहीं था कि अभिमन्यु, जो अब तक बिल्कुल शांत लग रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रहा था। अभिमन्यु ने फिर पृथ्वी की तरफ देखा और इशारे से उसे बाहर जाकर दिशांक को लाने के लिए कहा। वो समझ गया था कि अब जब अभिमन्यु ने इस मामले में अपनी टांग लड़ाई है तो वो इस मीटिंग में इशिका को कभी दोषी साबित नहीं होने देगा। बस वो मन ही मन दुआ कर रहा था कि मामला दिशांक संभाले, ना कि अभिमन्यु। वो नहीं चाहता था कि अभिमन्यु को सबको सबके सामने आकर कुछ कहना पड़े। जल्द ही पृथ्वी दिशांक को वहां लेकर आ गया था। दिशांक ने इस वक्त ब्लैक सूट पहना था और खुद को काफी अच्छे से तैयार कर रखा था। अंदर आते ही उसने इशिका की तरफ देखा और कहा, ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से मुझे आने में टाइम लग गया। अपनी सफाई देने के बाद दिशांक वहां अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। मीटिंग रूम में हरेक शख्स की सीट के आगे माइक लगा था। कोई और कुछ बोलने से पहले पृथ्वी ने दिशांक की तरफ देखकर कहा, मिस्टर राठौर, आज आप इस मीटिंग में ये बताने के लिए आए हैं ना कि आपने ही डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट में सिंघानिया को दिया था? दिशांक तुरंत उस बात पर हामी भरता तो मामला वहीं पर सुलझ सकता था और मालविका का सच सामने आ जाता। सब दिशांक के चेहरे की तरफ देख रहे थे। तभी दिशांक ने हूँ सबको चौंकाते हुए कहा, नहीं, मैंने किसी को कोई प्रोजेक्ट नहीं भेजा है और मैं डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट किसी को क्यों भेजूंगा? उसकी बात सुनकर पृथ्वी चौंक गया। उसे दिशांक पर गुस्सा आ रहा था कि कहीं दिशांक पूरे मामले से खुद का नाम साफ करने के लिए तो यहाँ नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो इशिका बुरी तरह फंस जाती और ये साबित हो जाता कि उसी ने प्रोजेक्ट चुराया है। दिशांक का जवाब सुनकर आयशा ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो इशिका का साथ देगा तो उसकी चोरी पकड़ी जाएगी, लेकिन अब वो पूरी तरह निश्चिंत हो चुकी थी। मौके का फायदा उठाते हुए नक्श ने कहा, मिस्टर राठौर, आज आप यहाँ डॉक्टर मर्चेंट की तरफ से आए हैं ना? अच्छा हुआ आपको पता चल गया कि उनके नाम पर यहाँ क्या कुछ हो रहा है। आप इस मीटिंग में शामिल होइए, हम डॉक्टर मर्चेंट के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। नक्श की बात सुनकर दिशांक के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी और वो भौहें उठाकर बोला, हाँ, मेरे बॉस का नाम तो इन सबसे क्लियर करना ही होगा। दिशांक अपनी जगह पर वापस बैठ गया। अचानक जब उसकी नजरें इशिका से मिली तो उसने इशिका को देखकर आई विंक की। इशिका ने उसे देखकर सिर हिलाया। ऐसे कठिन पल पर भी उसे मस्ती सूझ रही थी। दिशांक की सीट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के पास थी। उसने दिशांक के बैठते ही धीरे से कहा, मिस्टर राठौर, हम हमेशा से चाहते थे कि आप या डॉक्टर मर्चेंट में से कोई भी आकर हमारी यूनिवर्सिटी में गेस्ट क्लासेस लें। हम आपको इनविटेशन भेजना चाहते हैं, प्लीज उसके लिए इनकार मत कीजिएगा। ये तो उस पर निर्भर करता है कि आज का मामला कैसे संभाला जाता है, दिशांक ने सख्ती से जवाब दिया। दिशांक का जवाब सुनकर डायरेक्टर चौंक गया था। डीन ने बात को संभालते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए मिस्टर राठौर, हम उस स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी में नहीं रहने देंगे जो डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चुराने की हिम्मत करता है। दिशांक ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा। वही डायरेक्टर उसकी बात से गुस्सा हो गया। किसी भी स्टूडेंट को निकालने का एक प्रोसेस होता था। यूनिवर्सिटी मीटिंग के बाद ही किसी स्टूडेंट को निकाला जाता था। फिर ऐसे वो इस तरह बिना किसी सबूत और मीटिंग के कैसे इशिका को निकालने की बात दिशांक से कह सकता था? उसकी बातें सुनकर दिशांक ने गुस्से में कहा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था कि आप अपने स्टूडेंट का फेवर करेंगे। लेकिन हम उसका फेवर क्यों करेंगे? उसने इतनी बड़ी गलती की है, गीन ने भौहें उठाकर कहा। कौन सी गलती? दिशांक ने उसे घूरते हुए पूछा। उसने डॉक्टर मर्चेंट के प्रोजेक्ट को चुराया है, तभी ये इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, डीन ने जवाब दिया। दिशांक ने सख्त आवाज में कहा, और कोई सबूत है इस बात का कि डॉक्टर मर्चेंट का प्रोजेक्ट चोरी हुआ है और उसी ने चुराया है? डीन ने मालविका की तरफ इशारा करके कहा, वो उस लड़की की माँ है, उसी ने वो प्रोजेक्ट चुराया था। मिस आयशा सिंघानिया ने उसका वीडियो भी यहाँ पेश किया है, जिसमें वो डॉक्टर मर्चेंट का भेजा हुआ प्रोजेक्ट चुरा रही थी। ओह रियली? और ये सब आपको मिस आयशा ने बताया होगा, दिशांक ने भौहें चढ़ाकर कहा। आयशा अब तक इन मामलों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी। डीन के कहने पर ही वो बोली, हाँ ये सही कह रहे हैं। उसने मालविका की तरफ देखकर इशारा करके कहा, आंटी ये डॉक्टर मर्चेंट के मैनेजर हैं, अगर मामला ये यहीं पर क्लियर कर देते हैं तो बाहर डॉक्टर मर्चेंट तक नहीं पहुंचेगा और शायद इशिका को माफ कर दिया जाएगा। आयशा का इशारा समझते हुए मालविका तुरंत दिशांत के पैरों में आकर बैठ गई। वो बोली, मिस्टर राठौर प्लीज आप मेरी बेटी को माफ कर दीजिए, उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि वो आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगी। नक्श ने उसे रोकते हुए कहा, आंटी प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। मालविका ने रोते हुए कहा, मैं अपनी इशिका के लिए कुछ भी करूंगी, जब तक आप उसे माफ नहीं करोगे मैं उठूंगी नहीं। इशिका बेटा प्लीज तुम भी माफी मांग लो। अचानक इशिका अपनी जगह से खड़ी हुई और मालविका की तरफ देखकर गुस्से में बोली, आप कुछ भी करेंगी मेरे लिए? इशिका का ये रूप देखकर सभी हैरान रह गए थे। अब वक्त आ गया था जब इशिका को अपनी चुप्पी तोड़नी थी, क्योंकि बहुत सुन लिया था उसने। फिलहाल के लिए इतना ही, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पाठ पर मिलते हैं।